गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छोड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छोड़ाया इलाही।
हमारे प्यारे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने वफादार गुलाम हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर आपने ताइफ का सफर इख्तियार किया। कबीला बनू सकीफ ये बहुत ही मतलब यानी के जाहिल कबीला था, बहुत ही मतलब यानी के बिगड़ा हुआ कबीला था। आपने उस कबीले के सरदारों को जमा किया और उनको आपने इस्लाम की दावत दी, इनकी भलाई की दावत दी, इनकी खैर की दावत दी, इनको अदाब कब्र से बचने की दावत दी, इनको कयामत की होलनाकियों से बचने की दावत दी, इनको दोजक के होलनाक अजाब से बचने की दावत दी। लेकिन जहालत उन पर गालिब आई, शिकावत उन पर गालिब आई, उनकी समझ में कुछ ना आया और ये तरह तरह से मजाक उड़ाने लगे कि क्या अल्लाह ने आपको नबी बनाना था, उसको कोई मिला ही नहीं, आपके पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है, आपके पास तो ये भी नहीं, अगर बनाना होता तो हम जैसे किसी रईस को वो नबी बनाता, और अगर तुम नबी हो तो अपने आप को बचा कर दिखाओ। इस तरह मतलब तरह तरह के ताने दिए और फिर अपने गुलामों को और लड़कों को इन लोगों ने उकसाया कि ये मतलब नऊज़ु बिल्लाह मजनून है और ये अजीब अजीब बातें करते हैं, हमारे बाप दादाओं के दीन को बुरा कहते हैं, इसको मत छोड़ना, खूब इसकी पिटाई करो। तो अब यक बारगी एक अंबोह कसीर आपकी तरफ बढ़ता है और आपको घेरे में लेता है और इस नूर के पुतले पर इन जालिमों ने पथराव शुरू कर दिया, इस कदर संगबारी की, इस कदर खून बहने लगा कि आपकी नाले ने अकदस खून से भर गई। जब मैंने ये हदीस पढ़ी मेरा दिल कांप गया कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक पर जब पत्थर लगता हमारे आका तकलीफ के मारे बैठ जाते थे और फिर जरा इफाका होता फिर खड़े होते हैं, फिर ये जालिम लोग आप पर पत्थर मारते। आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर इनके लिए आप तबाही की दुआ क्यों नहीं कर देते, लेकिन आपने इससे मना फरमाया। बादल नजर आया, फिर हजरत जिब्रील अमीन उसमें से आए और अर्ज किया कि हुजूर मैं मलकुल जिबाल को आपकी खिदमत में लाया हूँ, जिबाल जबल की जमा है यानी जो फरिश्ता मतलब पहाड़ों पर मौकिल है, उसको लाए हूँ। मलकुल जिबाल हाजिर होते हैं और सलाम अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह दुनिया के जितने पहाड़ हैं सब मेरे कब्जे में, मैं इन पहाड़ों पर तसर्रुफ कर सकता हूँ, हुजूर इजाजत दें तो पहाड़ों को मैं हुक्म दे दूँ तो ये सारी की सारी बस्ती जो है ये इन पहाड़ों में पिस कर मतलब हलाक हो जाए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनके लिए मतलब कोई बद्दुआ नहीं फरमाई, इनके लिए किसी किस्म की आपने तबाही नहीं चाही, बल्कि आपने इनके लिए दुआ की या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, और आपने मतलब ये तमन्ना की कि इंशाअल्लाह इनकी नस्लें जरूर मुझ पर ईमान ले आएंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि हमारे प्यारे आका हमारे मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस कदर तकलीफें बर्दाश्त की, किस कदर तकालीफ बर्दाश्त की कि वाकई यानी के गौर करते हैं तो दिमाग काम करना छोड़ देता है कि इनको क्या आखिर जरूरत थी, इनके पास कमी क्या थी। अगर आप चाहते तो पहाड़ इन पर टूट पड़ते, आप चाहते तो जमीन इन पर फट पड़ती, आप चाहते तो आसमानों से इन पर आग बरसती और ये सब जल जाते, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, आपकी राफत देखिए, आपकी शफकत देखिए कि फिर भी आप इनके लिए दिल में कुढ़ते रहे, इनके लिए दुआएं करते रहे, इनको बद्दुआ आपने नहीं दी। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप भी सोचो कि एक तरफ हमारे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस्लाम के लिए मेहनत, दीन के लिए तड़प, और इस कदर मेहनत और तड़प के साथ आपने तबलीग की और बिलाखिर ये इस्लाम हम तक पहुंचा। आज कोई नबी नहीं आएगा, हमारे प्यारे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी आखिरुस ज़मान है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब ये तबलीग का काम, ये दीन की इशाअत का काम, ये अमरुम बिल मारूफ का काम, ये नहयुन अनिल मुनकर का काम अब उम्मत के सिपुर्द कर दिया गया है। अब ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो दीन की तबलीग करे, वो लोगों को नेकियों का हुक्म दे, वो लोगों को बुराइयों से बचने पर आमादा करे। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम सबका ये मनसब है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने शोबे में, अपने अपने फील्ड में, जहाँ जहाँ हमारी रिसाई है, हम दीन का काम करें। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन हम बड़े कोताह निकले, हम बड़े सुस्त निकले, हम बड़े मफाद परस्त निकले, हम बड़े पक्के गाफिल और दुनियादार निकले। अरे ऐ मोहब्बत रसूल का दम भरने वालों, ऐ इश्क रसूल का दावा करने वालों, ऐ नामे मुस्तफा पर जान माल कुर्बान करने के दावेदारों, तुम जिस नबी पाक शहे नौलाख सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तन मन धन से वारी वारी होने के दावे करते हो, बुलंद बांग दावे करने वालों, जरा गौर तो करो, वो नबी पाक, वो अल्लाह का महबूब तो कांटों पर चलकर भी दीन की तबलीग करता रहा, वो अल्लाह का महबूब तो अपने रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को हंसते हुए सहते हुए भी दीन की तबलीग करता रहा। अल्लाह का महबूब कांटों पर चलकर तबलीग करे, और हमसे तो फर्शो फरोश पर कालीन और गालीचे पर बैठकर भी तबलीग ना हो सके। अल्लाह का महबूब चिलचिलाती हुई धूप में और चलती हुई लू में तबलीग करे, और हम ठंडे ठंडे पंखों के मजे लेने के बावजूद, एयर कंडीशनर की ठंडकें पाने के बावजूद भी दीन की तबलीग ना करें। ऐ मेरे नादान इस्लामी भाइयों, सोचो तो सही, अल्लाह के महबूब को संग बारी में और पत्थरों की बारिशों में भी दीन की तबलीग करें, और हाय अफसोस, हम पर लोग हालांकि फूल निछावर करते हैं, फूल बरसाते हैं, फिर भी हम तबलीग नहीं करते। अरे उनकी गर्दन पर तो ऊंट की ओझड़ी डाल दी जाती, फिर भी वो तबलीग से बाज ना आते। हाय अफसोस, हमारे गले में लोग फूलों का हार डालते हैं, फिर भी हमसे तबलीग नहीं होती। हमें मामूली अगर तकलीफ आती है, हमारी जबान पर शिकवा और शिकायत का अंबार लग जाता है, और उस सब्र के पैकर को देखो कि इस पर ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो नहीं टूटी, लेकिन कभी हर्फ शिकायत जबान पर ना आया, कभी गुस्सा आपको ना आया, कभी दुश्मन से इंतकाम लेने का ख्याल आपको ना आया। तो ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अलमबरदारों, ऐ सुन्नतों पर कट मरने की तमन्ना रखने वालों, आओ वो वक्त आ पहुंचा। अब फिर एक बार इस्लाम मजलूम है, एक बार फिर इस्लाम और बानिये इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगामात पर लोगों की तवज्जो हट गई। आज फिर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाए हुए सर्रीन उसूलों से रूगर्दानी बरती जा रही है, आज फिर सुन्नतों को पामाल किया जा रहा है। आओ आप भी अल्लाह की दी हुई जिंदगी से फायदा उठाओ, अल्लाह की दी हुई मोहलत से फायदा उठाओ, और इस सुन्नत अजीमा को जिंदा करने के लिए कमर बस्ता हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी इन्हीं उसूलों को जिंदा करने के लिए, इन्हीं सुन्नतों को जिंदा करने के लिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबलीग की सुन्नत को काम करने के लिए मारिज़े वजूद में आई। अब कमर बस्ता हो जाओ, सिर्फ कराची में काम करने से काम नहीं बनेगा, अपने महल्ले में सुन्नतों का पैगाम देने से काम नहीं बनेगा, अपने शहर से बाहर जाना होगा। मक्का मुकर्रमा से हमारे आका ने ताइफ का सफर किया, आपको मालूम था कि ये लोग मेरा पैगाम नहीं मानेंगे, ये लोग मुझे सताएंगे, ये लोग मुझ पर पत्थर बरसाएंगे, लेकिन फिर भी आप गए, क्योंकि ये अल्लाह की मशीयत थी, ताकि आपकी आने वाली उम्मत को भी पता चल जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ये पसंद करता है कि मेरे बंदे मेरी राह में तकलीफें उठाएं, मुसीबतें झीलें, मुश्किलात का सामना करें और मेरे दीन की तबलीग करें। वरना खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम का मोहताज नहीं, वो नबियों का मोहताज नहीं, वो सहाबा का मोहताज नहीं, वो वलियों का मोहताज नहीं, और ऐ 14वीं सदी 15वीं सदी के मुसलमानों, ये भी कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा मोहताज नहीं। ऐ मुबल्लिगो तुम भी सुन लो, तुम्हारा मोहताज नहीं। ऐ मुअल्लिमो तुम भी सुन लो, तुम्हारा मोहताज नहीं। ऐ दर्स देने वाले मुदर्रिसो सुन लो, तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि हम सब उसके मोहताज हैं। खुदा की कसम, वो चाहे तो एक हुक्म कुन से सारी कायनात को मुसलमान कर सकता है। खुदा की कसम, वो चाहे तो कुफार यहूदी तमाम ईसाई और तमाम देहरिये बयक वक्त अल्लाह के हुजूर झुक जाएं, सब सजदा ढेर हो जाएं, لیکن اس کی مشیت یہی ہے کہ مسلمان محنت کریں، اس کے راستے میں نکلیں، اپنے شہر کو چھوڑیں، اپنے گھر بار کو چھوڑیں، اپنے کاروبار کو چھوڑیں اور اس کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں اور راہوں کی صعوبتیں برداشت کریں، مشکلیں برداشت کریں، اپنے جیب سے خرچ کر کے مالی ایثار کریں، جانی ایثار کریں اور تبلیغ کریں۔ اے مسلمان بھائیوں، اگر تم نے تبلیغ نہ کی، اگر تم نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت نہ کی تو کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں محبت رسول کا دعویٰ لے کر جاؤ گے؟ اگر بالفرض محال اگر فرما دیا گیا کہ تمہاری خاطر ہمارے محبوب نے پتھر کھائے تھے، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے تھے، انہوں نے شہر و شہر خود بھی پہنچے اور اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو بھی سفر پر روانہ کیا تاکہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں، ان کے غلاموں نے آ کر تمہیں پاکستان میں آ کر بھی جگایا، لیکن کیا وجہ تھی کہ تم صرف اور صرف دنیا کے کاروبار میں مگن رہے، صرف اور صرف تم دنیا کی مشغولیات میں رہے؟ آخر تم نے اللہ کے دین کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے تم نے سفر کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے تم نے کیوں وقت نہیں نکالا؟ تو اے مسلمانوں، تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم سوچ لو، تم پکنک کے لیے جاتے ہو، ایک ایک ہفتہ 15-15 دن نکال کر آتے ہو، تم تعلیمی ٹور پر جاتے ہو، 2-2 مہینے گزار کر آتے ہو، تم بزنس ٹور پر جاتے ہو، کاروباری سفر پر جاتے ہو، لندن اور پیرس کے سنہرے خواب میں تم کھوئے ہوئے ہو، آہ دین کے لیے کون نکلے گا؟ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، تمہارے سامنے تمہاری آخرت کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ تم بھی دین کے لیے نکلو، اللہ کے محبوب کی سنت کو زندہ کرو، صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کرو۔ ہاں ہاں، تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح طائف میں پتھراؤ ہوا تھا، تم پر پتھراؤ کوئی نہیں کرے گا، پھر بھی طائف کی سنت کے لیے نکلو۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف آ جائے، تمہارا جیب کٹ جائے، تمہیں کھانے کا مناسب نہ ملے، تمہیں رہنے کی سہولت نہ ملے، کسی دوست کی بات تمہیں ناگوار گزرے، تو پھر سفر طائف کو یاد کرنا کہ محبوب نے تو اتنی تکلیفیں اٹھائی دین کے لیے، زبان پر اف نہ آیا، تو میں یہ معمولی سی تکلیف پر کیوں گھبراؤں، کیوں بھاگوں، کیوں تبلیغ کی راہ سے دور ہوں، کیوں سنتوں کی راہ سے دور ہوں، کیوں دعوت اسلامی کے ماحول سے دور ہوں؟ یہ تو شیطان کا سراسر دھوکہ ہے، شیطان مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اے شیطان، تو جتنا مجھے وسوسہ ڈالے گا، اتنا انشاءاللہ میں سنتوں کے راستے میں مزید پکا ہوتا چلا جاؤں گا۔
گناہوں سے مجھ کو بچا۔